आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये क्लास 10th के साइंस का 11th चैप्टर है। बच्चों, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में यानी कि 10th चैप्टर में लेंसेज वगैरह के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से जो लेंस होती है उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है और रिफ्रैक्शन होने के बाद में किस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज की फॉर्मेशन होती है, ये आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है और उसमें सीखा है कि किस तरीके से दो टाइप ऑफ लेंसेज होते हैं जिनकी मदद से जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी इमेज का फॉर्मेशन होता है लाइट की रिफ्रैक्शन होने के बाद में। और आप लोगों ने नेचर कैसा होता है इमेज का, कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजिशन पर होने से इमेज की अलग अलग पोजिशन कहाँ कहाँ होती है सब देखा। उसके बाद आपने इमेज की साइज बड़ी होती है या छोटी होती है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब भी सीखा। तो ये सारी चीजें आपने लेंसेज के बारे में पढ़ी, तो हम यहाँ पर उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लेंसेज के बारे में आपने जो पढ़ा है उससे आपको ह्यूमन आई के बारे में सीखने में हेल्प कैसे होती है?
तो यहाँ पर बात यह है कि आपने जो लेंसेज के बारे में पढ़ा है उससे मिली इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपको ह्यूमन आई के बारे में और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ह्यूमन आई के अंदर भी एक लेंस होती है और लेंस की फंक्शनिंग जैसे ह्यूमन आई की लेंस की फंक्शनिंग है वो सिमिलर ही होती है जैसी आप लोगों ने पढ़ी है। आपने पिछले चैप्टर में जो लेंसेज के बारे में पढ़ा है उसके बारे में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी ह्यूमन आई में प्रेजेंट उस लेंस पर भी एप्लीकेबल है। जो लेंस ह्यूमन आई में होता है उसमें भी लाइट जो होती है उस पर पड़ती है, इंसिडेंट होती है, उसके बाद लाइट इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के इमेज की फॉर्मेशन करती है और जो सारी फिनोमेनाज आपने पढ़ी हुई हैं यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम सारी बातें सीखेंगे कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी लेंस फंक्शन कैसे करती है। कभी कभी लेंस जो होती है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से हमें बाहर से दूसरी लेंस लगानी पड़ती है चश्मों के रूप में, तो वो हम कैसे यूज करते हैं, क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन प्रदान करने वाला है, आप लोगों को अपनी आईज के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस चैप्टर में न सिर्फ हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं बल्कि हम अपने आसपास के इस कलरफुल वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें आसपास जो कुछ ऐसी फिनोमेनाज होती हैं जो लाइट के रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं वो सारा भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन या फिर और भी कुछ चीज़ें जिसमें लाइट जो होती है किस तरीके से हम लोगों को जो लाइट है उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट एक ही कलर हम लोगों को ब्लू स्काई में दिखता है, जो स्काई है वो ब्लू ही क्यों दिखता है, ये सब हम पढ़ेंगे। साथ ही में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक वाइट लाइट की स्प्लिटिंग हो जाती है, वो बहुत सारे कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम ये चैप्टर शुरू करते हैं और सबसे पहले ही हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, हम इंसानों की जो आईज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों को पता ही होगा ह्यूमन आई भी वन ऑफ दी सेंस ऑर्गन्स है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स है, जिसकी ईयर्स हैं जो सुनने में मदद करते हैं, हियरिंग का परसेप्शन लेते हैं, जो आवाजें आ रही हैं उसको सुन के उसके सिग्नल्स ब्रेन में सेंड करते हैं। नोज है एक सेंस ऑर्गन जो कि स्मेल को सेंस करता है और उसके सिग्नल्स को ब्रेन में पहुंचाता है। सिमिलरली आईज भी एक सेंस ऑर्गन है जो कि आसपास की चीजें देखने के लिए लाइट को परसीव करने के लिए जो लाइट का सिग्नल है उसको लेता है और उसके बाद वो उसको परसीव करके यानी कि प्राप्त करके वो ब्रेन में उस सिग्नल को सेंड करता है। तो मान लो कि आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं तो आप आवाज सुन के या फिर स्मेल से थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं कि आसपास आपकी क्या चीज होगी, लेकिन आप सिर्फ इमेजिन करके बता सकते हैं, वो भी तब जब आपने पहले से वो चीजें सुन रखी हैं या फिर उसकी स्मेल जो है वो आपको पता है कि इस चीज की ऐसी स्मेल होती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे आसपास क्या चीज है, लेकिन आप जब तक अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि उस चीज की कलर क्या है, उस चीज की अपीयरेंस किस तरीके से है। तो आप अगर बताना चाहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट कलर और उसका अपीयरेंस तो उसके लिए आपको अपनी आईज की हेल्प लेनी ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके घर में आपकी मम्मी ने आपके लिए बहुत कुछ टेस्टी खाना बनाया हुआ है, तो उसकी स्मेल से आप ये तो बता देंगे कि हाँ कोई खाने की चीज है, उसकी स्मेल से आप खाने की चीज बता देंगे, हो सकता है कि आप उसको टेस्ट करके ये भी बता देंगे कौन कौन सी चीजें उस खाने की जो खाना बनाए गए उसमें कौन कौन सी चीजें डली हैं उसको बनाने के लिए, तो आप उसका टेस्ट भी बता देंगे। लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो देखने में कैसा है, तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप अपनी आंखों से खुद नहीं देखते। तो आपकी आंखें जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आसपास बहुत सी रंगें जो हम देख पाते हैं, बहुत से कलर्स जो हम देख पाते हैं, वो अपनी आईज की वजह से ही है। कलर्स को आप सेंस नहीं कर सकते किसी और सेंस ऑर्गन के माध्यम से, आपको आईज का हेल्प लेना पड़ेगा। आप उस किसी चीज की स्मेल से उसका कलर नहीं बता सकते, किसी चीज की टेस्ट से उसका कलर तब तक नहीं बता सकते जब तक आपने उस चीज को देखा ना हो। तो कलर बताना है या फिर कितना ब्यूटीफुल वो चीज है, ये देखने के लिए, ये बताने के लिए और समझने के लिए आपको वो चीज देखनी पड़ती है जिसके लिए आपकी आईज आपको हेल्प करती है। हम लोगों की ह्यूमन आई जो है वो एक कैमरे की तरह वर्क करती है, एक कैमरे की तरह ये काम करती है। यहाँ पर जो हमारी आंख में लेंस है वो बेसिकली उससे पास होकर के, लाइट उससे पास होकर के, लेंस से पास होकर के इमेज की फॉर्मेशन करती है एक स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कैमराज में होता है कि लाइट पड़ती है लेंस पर और उसके बाद एक स्क्रीन पर इमेज का फॉर्मेशन होता है और वही फोटो आप लोगों को दिखाई जाती है, तो इसी तरीके से सिमिलर ही जो प्रोसेस है वो हमारी आंखों में भी होता है। हमारी आंखों के अंदर जो स्क्रीन का काम करता है, जैसे आप लोगों ने कैमरे में पढ़ा कि कैमरे में लाइट पड़ती है लेंस के ऊपर, लेंस से पास होकर के वो एक स्क्रीन पर पड़ती है और वही स्क्रीन जो है वो स्क्रीन बेसिकली क्या होती है, वो फोटो सेंसिटिव होती है। फोटो सेंसिटिव होने का क्या मतलब है? फोटो सेंसिटिव होने का मतलब है कि वो लाइट को डिटेक्ट कर सकती है। लाइट जब पड़ रही है तो वो कितनी इंटेंसिटी, कितनी पावरफुल है या फिर वो किस वेवलेंथ की है, उसकी एनर्जी कितनी है। अलग अलग आपको पता है, अलग अलग कलर की जो लाइट्स होती है उनकी वेवलेंथ अलग होती है और उनकी साथ में इंटेंसिटी भी अलग हो सकती है। अगर हम अलग ब्राइट, मान लो बहुत ब्राइट है कोई लाइट तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की है, कम अगर ब्राइट है तो वो कम इंटेंसिटी की है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो लाइट के में बहुत सी चीजें होती हैं जो लाइट की कंपोजिशन बेसिकली है। तो लाइट किस तरीके की है ये परसीव कौन करते हैं? फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स करते हैं। तो जब कैमरे से लाइट पास होती है, लेंस से पास होती है, तो वो एक स्क्रीन पर पड़ती है और स्क्रीन के ऊपर फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है जो कि सेंस कर लेता है कि किस तरीके की लाइट आई है। जिस तरीके की लाइट आई है उसको वो परसीव करता है और उसके बाद परसीव होने से ही वहां पर इमेज फॉर्मेशन हो पाती है और वही इमेज जो होती है वो आप लोगों को दिखाते हैं जो नेगेटिव होता है। तो उस नेगेटिव में बेसिकली वो नेगेटिव जो फिल्म बनती है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, एक रील होती है जो कैमरे में लगती है जो कि ब्लैक कलर की आप लोगों को दिखती है और उसे जो कैमरामैन होते हैं आपको कहते हैं कि ये आपकी फोटो का नेगेटिव है। तो वो जो नेगेटिव होता है उसी के ऊपर फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो उस पर आपकी इमेज बनने की उसमें फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, इमेज बन जाती है। तो जो स्क्रीन है वहां पर वो उस स्क्रीन में फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा हुआ है। सिमिलरली ऐसा ही स्क्रीन हमारी आंखों में भी होता है जिसके ऊपर फोटो सेंसिटिव जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो उसी स्क्रीन के ऊपर ही फोटो सेंसिटिव प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और इस स्क्रीन का नाम है रेटिना, जो हमारे ह्यूमंस में होता है, आईज में होता है। तो लाइट जो है वो आंखों के लेंस से पास होकर के रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करता है। अब आंखों में जिस जगह से लाइट एंटर करता है हमारी अंदर, आंख के अंदर लाइट जहां से एंटर करता है उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया बेसिकली क्या है? कॉर्निया सामने, आंख के सामने एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली जैसी है और इसी से पास होती है लाइट, उसके बाद लेंस में एंटर करती है, लेंस फिर इमेज की फॉर्मेशन करती है रेटिना के ऊपर। तो आपके फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं जो थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है और कर्व होता है, स्फेरिकल सा होता है, स्फीयर जैसे कि किसी स्फीयर का ये पार्ट हो, तो इस तरीके से ये होता है, थोड़ा सा बाहर को उगा हुआ होता है, तो इसे कॉर्निया कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो आप लोगों को डायग्राम दिया है द ह्यूमन आई, ये आप देखें आप फ्रंट पेज पे जो आपके हैं पेज नंबर 187 पर, तो इसमें आपको जो बाहर जो सब फ्रंट में दिखाया गया है, आंख की फ्रंट में थोड़ा सा उगा हुआ जो दिखाया है यही कॉर्निया होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसके आर पार लाइट बहुत इजीली जा सकती है ताकि लाइट एंटर कर पाए आपकी आंखों में। तो ये कॉर्निया जो होती है ये बल्ज्ड जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट बल्ज्ड पार्ट एंड इट इज आल्सो ट्रांसपेरेंट, इसे कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी जो आईज है इसकी इसकी अपीयरेंस किस तरीके की है, इसका शेप किस तरीके का है, तो नियरली स्फेरिकल होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है एब्सोल्युटली स्फेरिकल नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट होता है स्फेरिकल, और हमारी आंख जो होती है ये बोनी कैविटी में मौजूद रहती है। हमारा जो पूरा का पूरा स्कल है, खोपड़ी जो है, जिसे हिंदी में खोपड़ी कहते हैं, बोन से बना हुआ है, जो कि हमारे फेस के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कान के अंदर की कितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स कान से रिलेटेड होते हैं, तो वो सारा भी वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आंखों को भी स्पेस देता है, आंखें कहाँ होनी चाहिए, उसके बाद दांत कहाँ होने चाहिए, ये सारी चीजों को स्पेस देने के लिए स्कल होता है। स्कल में एक कैविटी होती है, बोनी कैविटी, बोन्स से बनी हुई कैविटी, इसे ऑर्बिट कहते हैं। तो इसी ऑर्बिट के अंदर आंखें मौजूद होती हैं, नियरली स्फेरिकल होती हैं, और इसका अप्रोक्सीमेटली डायमीटर जो है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो आपको जो आंख का हिस्सा दिखता है वो बहुत कम हिस्सा है, आप देख सकते हैं बहुत सारा बड़ा हिस्सा जो है वो आंख के पीछे मौजूद होता है, और जो हिस्सा आपको नजर नहीं आ रहा वो नियरली स्फेरिकल पार्ट का फॉर्मेशन करता है, और आपको दिखता नहीं है लेकिन ये नियरली स्फेरिकल होता है, आपके दिखने लायक नहीं होता, पीछे को होता है, ऑर्बिट्स में मौजूद होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, कॉर्निया से लाइट पास होने के बाद में लेंस पर पड़ती है, और लेंस पर पड़ने से पहले भी एक अपर्चर को ये क्रॉस करती है, अपर्चर मतलब कि एक ओपनिंग, तो एक ओपनिंग को ये क्रॉस करती है जिसका नाम है प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है बेसिकली ये ओपनिंग ही है, अपर्चर ही है, इसको नाम दे दिया गया है प्यूपिल। तो ये एक ओपनिंग है, सर्कुलर, नियरली सर्कुलर ओपनिंग है, तो इसके थ्रू ही लाइट पास करती है, और इस प्यूपिल को घेरती हुई एक कलर्ड मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो होती है, जिसे हम आयरिस कहते हैं। जैसे आपने कभी कैमरे में देखा होगा, कैमरामैन जो होते हैं वो लाइट की इंटेंसिटी कितनी पड़नी चाहिए उसको भी कंट्रोल करते हैं, वो अपर्चर जो लेंस की ओपनिंग है उसको कम ज्यादा करते हैं ताकि लाइट की इंटेंसिटी में वो वेरिएशन ला सके। तो सिमिलरली हम लोगों की आंखों में भी होता है, हमारी आंखों की एक ओपनिंग होती है, लेंस के ऊपर कितनी रोशनी पड़नी चाहिए ये ओपनिंग ही तय करती है, ये अपर्चर या फिर ओपनिंग, इसका काम यही है कि ये तय करती है कि कितनी लाइट की इंटेंसिटी आंख के अंदर एंटर करनी चाहिए, ज्यादा ना कर जाए ताकि आंख खराब ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखने का काम हमारी प्यूपिल का होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्यूपिल बेसिकली बस एक ओपनिंग है, अपर्चर है। अब इसकी ओपनिंग जो है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, ये कंट्रोल करता है आयरिस। आप कभी अपनी आंखों में देखना, शीशे में देख करके आपको दिखेगा कि सबकी आंखों का रंग अलग अलग होता है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की लाइट ब्राउन होती है, किसी की डार्क ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है। तो ये जो कलर मिल रहा है सबकी आंखों को वो इस आयरिस की वजह से ही मिल रहा है, क्योंकि आयरिस जो होता है इसकी रंग अलग अलग होती है, क्योंकि यही डार्क कलर है, डार्क मस्कुलर चीज है, ये डार्क कलर की होती है, दूसरे रंग की भी हो सकती है। तो ये जो आयरिस है इसी का रंग अलग अलग होता है, और ये अलग अलग ह्यूमंस में अलग अलग कलर की हो सकती है, और ये मसल्स की बनी होती है। तो ये क्या करती है कि ये मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कभी रिलैक्स होंगे, तो इसकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो छोटा साइज के हो जाएंगे, तो अगर आयरिस का साइज छोटा हो जाएगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, अगर आयरिस रिलैक्स कर जाएंगे, फैल जाएंगे, तो इनका साइज बड़ा हो जाएगा तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। तो आयरिस जो है वही बेसिकली प्यूपिल के ओपनिंग की कितनी साइज होनी चाहिए इस बात को तय करती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बार जब रिफ्रैक्शन होती है वो कब होती है, आंखों में जैसे ये लाइट एंटर करती है तब होती है। तो आंखों में फर्स्ट टाइम एंटर कब करती है लाइट, जैसे ही वो कॉर्निया पे पड़ती है। तो बाहर का मटेरियल तो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, और कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो जैसे ही एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दूसरे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट एंटर करती है तो वहां पर रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो सबसे पहली बार जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया पर होता है।
तो ऐसा है कि जो आईज है सबसे पहले लाइट एंटर कर रही है, कॉर्निया से एंटर किया उन्होंने, वहां पे रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद में उन्हें प्यूपिल से पास करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ओपनिंग है, और प्यूपिल की फंक्शनिंग, प्यूपिल की ओपनिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आयरिस के ऊपर। आयरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल की ओपनिंग को। उसके बाद प्यूपिल से पास होने के बाद लाइट जो है वो क्रिस्टलाइन लेंस पर पड़ती है, हमारी आंखों में जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसके ऊपर पड़ती है। जो क्रिस्टलाइन लेंस हमारी आंखों में है ये बेसिकली इसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, और हमारे जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं उस पर फोकस करने के लिए हमारी जो आईज के अंदर लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है, ये अपने आप को एडजस्ट करती है और फोकल लेंथ वेरी कर पाती है ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए। तो हमारी आंखों में ये जो लेंस है, ये बेसिकली एक तरीके से एक एडजस्टमेंट्स करती रहती है, ताकि जो ऑब्जेक्ट है, अलग अलग डिस्टेंसेस पर रखे ऑब्जेक्ट हैं, उनको अच्छे से उनकी जो इमेज है वो फोकस हो पाए रेटिना पे। तो बेसिकली जो लेंस है वो एडजस्टमेंट्स का काम करती है, फोकल लेंथ को जितनी भी रिक्वायर्ड फोकल लेंथ है उसका यूज करके वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फिर उसकी इमेज बनाती है और उस इमेज को वो फोकस करती है ऑन योर रेटिना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि प्यूपिल जो है वो क्या करता है, वो आईज के अंदर कितनी लाइट पहुंचनी चाहिए वो बेसिकली रेगुलेट करता है, और उसकी भी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है आयरिस। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि जो ओपनिंग है हमारी प्यूपिल की, जो ओपनिंग है इसको बड़ा या छोटा करने की जरूरत ही क्यों है। तो देखो, ऐसा इसलिए है कि मान लो आप कहीं पर खड़े हैं जहाँ बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, बहुत ही ब्राइट है वो जगह, जैसे कि सूरज की रोशनी बहुत ब्राइट होती है, तो आप मान लो कि आप सूरज की रोशनी की तरफ अगर देख रहे हैं, वैसे तो देखना नहीं चाहिए सूरज की रोशनी की तरफ डायरेक्टली, लेकिन धूप में ही मान लो आप जो चीजों को देखते हैं तो वहाँ जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में अगर आपकी प्यूपिल की ओपनिंग बड़ी रहेगी तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आंख में एंटर करेगी और आपके लेंस पर पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि जो आईज की स्ट्रक्चर है अंदर से इंटरनली डैमेज हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर जाए, ब्राइट लाइट एंटर कर जाए आपकी आंख के अंदर, तो उससे क्या होगा कि आपकी आईज को बहुत बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, जिससे आपकी देखने की शक्ति काफी कम हो सकती है या फिर सिग्निफिकेंटली लॉस हो सकती है। आप खुद ही सोचो, आपकी आंख में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि कॉर्निया है, फिर प्यूपिल है, फिर लेंस है, फिर एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस के बीच एक स्पेस है जो कि जेली लाइक मटेरियल से भरा हुआ है, उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और विट्रस ह्यूमर क्या होता है, लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है पूरा का पूरा, वो भी एक जेली लाइक मटेरियल से भरा होता है, उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो आगे वाला जो पार्ट है कॉर्निया और लेंस के बीच वाला जो स्पेस है वो एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ होता है, और लेंस और रेटिना से जो स्पेस वहां पर क्रिएट हो रहा है वो विट्रस ह्यूमर से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारे आंख में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, कॉर्निया है, प्यूपिल है, लेंस है, एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, उसके बाद रेटिना है। तो ये सारी चीजें जो है, मान लो इनमें से कोई एक भी खराब हो जाता है तो आंख जो है वो प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। सपोज अगर कॉर्निया खराब हो जाएगी तो आंख में लाइट एंटर ही नहीं करेगा, तो हमें कुछ चीजें दिखाई ही नहीं देंगी। अगर हमारी प्यूपिल खराब हो जाएगी तो भी आंख खराब हो सकती है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कितनी जाए कितनी नहीं जाए ये हम डिसाइड नहीं कर पाएगी हमारी आंख, तो उससे भी आंखें खराब हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आंख के अंदर की हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए ये जरूरी है कि हर एक पार्ट प्रॉपर फंक्शन करे। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है प्यूपिल का, जो कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट एंटर करनी चाहिए आंख में इसका डिसीजन करती है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम कहीं पर पहुंच जाएं, बहुत ब्राइट रोशनी है वहां पर, ऐसी जगह हम थोड़ी देर खड़े हैं, उसके बाद जस्ट सडनली हम अचानक से ही किसी ऐसे कमरे में चले जाते हैं जो बिल्कुल ही अंधेरा है, तो बहुत कम रोशनी है वहां पर, तो हमें पहले पहले दिखाई देने में, चीजें दिखाई देने में बहुत तकलीफ होती है, चीजें अच्छे से नहीं दिखती है। कुछ देर बाद हम वहां पर चीजें भी अच्छे से देख पाते हैं जहां पर रोशनी कम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन होने से हमारी आंख जो है वो किस तरीके से चीजें देख पा रही है, नहीं देख पा रही है, इस पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी प्यूपिल जो है वो क्या करती है, वो एक कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी जितनी रिक्वायर्ड है जिससे कि आंख खराब ना हो, उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट वो हमारी आंखों के अंदर भेजती है। जब हम लोग बहुत ज्यादा ब्राइट रोशनी में होते हैं, तो जैसे कि मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटिंग हो रखी है, जैसे शादियों वगैरह में कितनी ज्यादा लाइटिंग होती है, तो ऐसी जगह पर जब हम होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी आंखों की जो प्यूपिल है ये अपना साइज छोटा कर देती है, इसकी ओपनिंग जो है ये डिक्रीज हो जाती है और छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा जो रोशनी है वो आंख में एंटर ना करे, जरूरत से ज्यादा एंटर ना करे, जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही करे और एक्सीड ना करे। एक लिमिट होती है, जिससे ज्यादा अगर हो गई रोशनी आंख में तो हमारी आंख खराब हो जाएगी। तो ओपनिंग को छोटा कर दिया जाता है प्यूपिल के द्वारा, ताकि बहुत ज्यादा रोशनी जो है, जरूरत से ज्यादा रोशनी आंख में एंटर ना करे, ताकि डैमेज ना हो पाए। तो ये तो तब होता है जब बहुत ज्यादा रोशनी है हमारे आसपास। दूसरा मान लो कि जब रोशनी कम है, अगर ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ रोशनी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम रोशनी है, तो ऐसे में प्यूपिल का साइज जो है उसे बढ़ा दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा आंख में रोशनी पहुंचे, और वो एक जो लिमिट है आंख की रोशनी की, तभी हमें चीजें दिखेंगी क्लियरली, उस लिमिट तक की रोशनी हमें चाहिए होगी। तो इसीलिए प्यूपिल का साइज बड़ा कर दिया जाता है ताकि थोड़ी सी लाइट जो पड़नी चाहिए आंख पर, उतनी सफिशियंट लाइट कम से कम पड़ जाए ताकि हमें चीजें क्लियरली दिखे। तो इस तरीके से प्यूपिल का ओपनिंग का साइज बड़ा छोटा होने से हमारे अंदर आंख के अंदर जो लाइट है कितनी कम ज्यादा पड़ती है ताकि आंख प्रॉपरली फंक्शन कर पाए और चीजें हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे पाए। और उसपे से भी जो प्यूपिल की ओपनिंग है उसको कंट्रोल करती है आयरिस। तो आयरिस जब ब्राइट लाइट होती है उस वक्त आयरिस कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे कि प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आयरिस है ये प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करती है। तो जब ब्राइट लाइट होती है तो आयरिस प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, छोटा कर देती है, और अगर डिम लाइट होती है तो ओपनिंग को बढ़ाने के लिए जो प्यूपिल का साइज है उसको बड़ा कर देती है आयरिस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो लाइट पड़ रही थी आंखों पर वो कॉर्निया से पास होके उसके बाद प्यूपिल से पास होके लेंस पर पड़ेगी। अब लेंस जो है वो आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, एक रियल इमेज की फॉर्मेशन कर दी। और ये जो रियल इमेज है अगर प्रॉपर हेल्दी आईज है तो इसकी इमेज जो बनेगी लेंस के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, वो रेटिना पे पड़ेगी। अब रेटिना क्या है, रेटिना एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी आंखों का, इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट को पहचानता है, उसकी सिग्नल को परसीव करता है, प्राप्त करता है। अब इसने सिग्नल प्राप्त कर लिया उसके बाद इसको तो वो लाइट के फॉर्म में मिला था, तो उसकी अलग अलग इंटेंसिटी, लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, कितना तेज रोशनी का है, कम रोशनी का है, ये उसकी इंटेंसिटी होती है बेसिकली। तो यहाँ पर लाइट की रोशनी अलग अलग है, तेज है तो उसको भी उसने पहचान लिया, कम है तो उसको भी उसने पहचान लिया रेटिना ने, तो जो लाइट है उसको परसीव कर लेता है। उसके बाद पहुंची तो उसके पास सिग्नल लाइट के फॉर्म में है, लेकिन जब वो भेजता है ब्रेन के पास तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो यहाँ पर रेटिना का दो काम है, रेटिना का पहला काम तो ये है कि वो लाइट को परसीव करे, दूसरा काम ये है कि वो उस लाइट को लाइट के फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करे और ब्रेन के पास सेंड करे। अब जिस रास्ते से रेटिना भेजता है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन के पास, वो रास्ता जो है वो ऑप्टिकल नर्व से होकर के जाता है। तो रेटिना बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बना करके ऑप्टिकल नर्व्स में भेज देता है। नर्व्स तो आपको पता है नर्व्स ही है जो एक नेटवर्क बनाती है और ब्रेन तक सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर के जाती है। तो हमारी आंखों में रेटिना जो है उसने लाइट को परसीव कर लिया, उसके बाद उस लाइट को वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में वो ऑप्टिकल नर्व्स के पास भेजता है, और ये नर्व्स जो है ये सिग्नल को ब्रेन तक भेजती है। ब्रेन जो है इस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, पहचानता है, और ये वो पहले उसने क्या चीज देखी हुई है उसके आधार पे इमेज को वो इंटरप्रेट कर पाता है, और इस तरीके से ही हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेजेस दिख पाती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पेज नंबर 188 पर आप जाओ आप लोग और पावर ऑफ अकोमोडेशन ये देखेंगे हम, ये क्या होता है। हमारी आई लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से बनी हुई है, और इसकी जो कर्वेचर है ये मॉडिफाई हो सकती है। अगर कर्वेचर मॉडिफाई हो सकती है तो इसकी फोकल लेंथ भी मॉडिफाई हो सकती है। अब हमारे लेंस को उसका कर्वेचर मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, उसको उसके कर्वेचर को मॉडिफाई करने का काम कोई ऐसी स्ट्रक्चर ही कर सकती होगी, ऐसी ऑर्गन ही कर सकती होगी जो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी तो मसल्स में होती है, तो हमारी जो लेंस है उसको उससे अटैच्ड एक मसल्स होती है जिनका नाम होता है सीलियरी मसल्स। लेंस जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा होगा उसकी दो पॉइंटेड साइड्स होती है, तो ऊपर नीचे जो दो पॉइंटेड साइड्स है दोनों ऊपर नीचे सीलियरी मसल्स अटैच्ड होती है, लेंस को आंख से जोड़ती है, और यही सीलियरी मसल्स जो है बेसिकली हमारे लेंस का कर्वेचर चेंज करती है जिससे फोकल लेंथ चेंज हो जाता है और हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल फोकस करके अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पेज नंबर 187 पर फिगर 11.1, इसमें आप देखो लेंस के ऊपर नीचे लेंस को आंख से जोड़ती हुई जो मसल्स है वो सीलरी मसल्स हैं। तो सीलरी मसल्स बेसिकली हमारे लेंस की कर्वेचर मॉडिफाई करने में हेल्प करती हैं। अब देखो होता कैसे, काम कैसे करती हैं ये सीलरी मसल्स। जब सीरियली मसल्स रिलैक्स करते हैं तो हमारा लेंस जो है वो थिन हो जाता है, पतला सुकड़ा सा हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो आप दूर दूर तक की चीजों को बहुत क्लियरली देख पाएंगे। तो अगर यहाँ पर ये आपको याद रखना है किस तरीके से होता है, सिलेरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिलेरी मसल्स अगर इस नेक्स्ट केस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी लेंस जो है उसकी कर्वेचर बढ़ जाती है। अगर कर्वेचर बढ़ जाएगी तो मोटा हो जाएगा आपका लेंस थोड़ा सा, और उससे क्या होगा कि फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से आप पास की चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सिलरी मसल्स जो है वो लेंस की फोकल लेंथ को मॉडिफाई कर रही है। तो इसी को अकोमोडेशन कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन करने की क्षमता, अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर लेना, फोकल लेंथ को वेरिएशन दे देना, ये अकोमोडेशन है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है हमारी आंखों की। और इसमें हेल्प कौन कर रहे हैं, लेंस और सिलरी मसल्स दोनों का ही योगदान है पावर ऑफ अकोमोडेशन की क्षमता के लिए। तो यहाँ पर सिलरी मसल्स दो केसेस हैं, पहला अगर वो रिलैक्स करे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और हम दूर की चीजें अच्छे से देख पाएंगे। और दूसरा ये कि अगर सिलरी मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने से जो हमारा लेंस है वो फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा और हम पास की चीजें अच्छे से देख पाएंगे। और ये तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि अगर लेंस थिन हो जाता है तो उसका कर्वेचर वहां पर कम हो जाएगा, फोकल लेंथ अगर यहाँ पर बढ़ाना है तो कर्वेचर जो है वो कम हो जाता है, और अगर फोकल लेंथ को घटाना है तो ऐसे में कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो दूसरे वाले केस में जब फोकल लेंथ को घटाना था तो कर्वेचर इंक्रीज हो गया था। तो इस तरीके से जो हमारी आईज है उसकी लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, इसी को अकोमोडेशन कहते हैं। जो फोकल लेंथ की वेरिएशन दिख रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उस हिसाब से फोकल लेंथ को वेरिएशन देना और एडजस्ट कर पाना, यही अकोमोडेशन कहलाता है। और आपने कभी एक बात नोटिस की होगी कि आप दूर की चीजें देख पाते हैं, आप पास की चीजें देख पाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही, आप एकदम आंख के पास चिपका लेंगे कोई ऑब्जेक्ट तो आप उसकी इमेज नहीं देख पाते हैं। तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि आप अपनी आंखों की लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट तो कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक ही। अगर आप उसे डिक्रीज करते जा रहे हैं फोकल लेंथ को, तो एक लिमिट तक ही आप डिक्रीज कर सकते हैं, बियॉन्ड दैट लिमिट आप उसे डिक्रीज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप एक लिमिट तक ही पास में ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, उससे ज्यादा एकदम क्लोज कर देंगे तो आप चीजें नहीं देख पाएंगे। सिमिलरली आपकी जो चीजें हैं तो दूर बहुत रखी हैं, तो एक लिमिट तक ही आप दूर की ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, उससे ज्यादा दूर आप नहीं देख पाते। लेकिन एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए जो लिमिट निर्धारित की गई है वो इन्फिनिटी है, यानी कि बहुत दूर दूर तक की चीजें भी आपको आसानी से दिख जाएंगी अपनी आंखों से। तो यहाँ पर एक लिमिट है जिस तक हम अपनी नियर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो देख सकते हैं, और उससे नियर करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे, उसकी इमेज ब्लर हो जाएगी, या फिर हमें बहुत ही एकदम चिपकाई लोगी आंखों पे तब तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगी। तो जो नियर पॉइंट है, मिनिमम कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा सबसे मिनिमम वाला डिस्टेंस है जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखें तो आपको चीजें अच्छे से दिखे, वो 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप ऑब्जेक्ट्स को अगर रखते हैं अपनी आंखों से तो आपको वो चीजें, ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी अच्छी सी क्लियर इमेज दिखाई पड़ेगी, और उस टाइम पे आपकी आंखों पर जो होता है वो जब आप ऑब्जेक्ट्स को 25 सेंटीमीटर या उससे आगे रखेंगे तो क्लियरली दिखेगी। अगर उसके डिस्टेंस को कम करेंगे और कम करेंगे और कम करेंगे तो आपकी आंखों पे जोर पड़ने लगता है और स्ट्रेन सा महसूस होता है आंखों में। तो ये सारी चीजें रिलेटेड होती है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आप ऑब्जेक्ट्स को रखें और आपको उसकी क्लियर इमेज दिखाई पड़े उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऐसी सबसे मिनिमम दूरी, ऐसी सबसे कम दूरी जहां पर आप ऑब्जेक्ट्स को रखें और आपको क्लियर उसकी इमेज दिखाई पड़े वो 25 सेंटीमीटर होती है, और इसको एक नाम दिया गया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसे नॉर्मल पॉइंट ऑफ, नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहते हैं। नियर पॉइंट कहें या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहें, दोनों एक ही बात है, और इसकी वैल्यू जो होती है एक नॉर्मल हेल्दी आंख के लिए वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये तो बात हो गई कि मिनिमम कितनी दूरी पर हम देख सकते हैं। अगर मैक्सिमम दूरी की बात की जाए कि कितनी ज्यादा दूरी तक आप देख सकते हैं चीजें, तो वो इन्फिनिटी कही जाती है। एक हेल्दी नॉर्मल आई के लिए वो कहा जाता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है ये फार पॉइंट ऑफ द आई कहलाएगा और नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर होगा। तो इससे बेसिकली आपको एक रेंज मिल जाता है कि आप कितने से कितने चीजें दूरी तक की देख सकते हैं। तो आप बेसिकली 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट दूरी तक कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं रखा हो तो उसकी इमेज आसानी से आपकी आंखों के रेटिना पे बनेगी और आप उसकी क्लियर इमेज देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई समझ आ गया होगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी आपको कहीं कोई डाउट्स आ रहे हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।